Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला जो अमृतत्व है वह ज्ञान से साध्य नहीं है। जो पहले से अमृत यानी ब्रह्म स्वरूप नहीं था उसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ने जीव में लाया हो, ऐसा नहीं। यदि जो मृत है का मतलब विनाशी है, उसे अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार अविनाशी बना दे, अमृतत्व बना दे, तब तो माना जाएगा कि ज्ञान का साध्य वो अमृतत्व हुआ। लेकिन ये ज्ञान तो खाली इतना बता रहा है कि आप तो अमर ही हैं, आप अमृत स्वरूप ही हैं, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। वो जो वास्तविक स्वरूप विषयक आपका विस्मरण है, उस विस्मरण को हटाता है और स्मरण कराता है। स्मरण कराने मात्र से उसे ज्ञान से उत्पन्न हुआ ये नहीं कहा जाएगा। तो आत्मना विन्दते, इससे बताया गया कि वो जो अमृतत्व शब्दित ब्रह्म भाव है वह तो स्वाभाविक है, इसलिए नित्य है। तो फिर तो आत्म रूप से यानी स्वाभाविक ही अमृतत्व हमें उपलब्ध हुआ, तो ज्ञान ने क्या किया फिर? अमृतत्व तो हमारा स्वभाव ही था, स्वाभाविक ही था, ज्ञान का फल नहीं था। तो ज्ञान क्या करता है? तो कहते हैं ज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो अंतकरण की साक्षात्कारात्मिका वृत्ति है, वह जिसके अंतकरण में प्रकट होती है उनके अंतकरण में एक सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं वीर्यम विद्या विन्दते। विद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और यह साक्षात्कार उत्पन्न होते ही, जैसे सूर्योदय होते ही रात्रिकालीन सारा का सारा अंधकार निवृत्त होता है, ऐसे तत्त्वमशादि महावाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार उत्पन्न होते ही, वह उत्पन्न हुआ साक्षात्कार अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ जो विपरीत ज्ञान है उसे निवृत्त करता है, अविद्या को निवृत्त करता है। और अविद्या की निवृत्ति करने के बाद स्वयं भी यह वृत्ति निवृत्त हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति। सारा अज्ञान तथा अज्ञानज भ्रम बुद्धि में से निकल गया, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति भी निवृत्त हो गई। तो फिर शेष क्या रहा? तो शेष रहता है जो अपना स्वरूप है, वो स्वरूप है, और वो स्वरूप फिर हमेशा स्फुरित होता रहता है। अज्ञान के निवृत्त होने के बाद फिर कभी भी स्वरूप का विस्मरण नहीं होता है। और ये वृत्ति जाने से पहले अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति करती है और स्वयं भी चली जाती है, लेकिन जाने से पहले ज्ञानी के अंतकरण में एक वीर्य, वीर्य कहते बल को, सामर्थ्य को प्रदान करती है। और वो सामर्थ्य है कि पुनः कभी भी उसको अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति नहीं होने देता, निरंतर वो वास्तविक स्वरूप स्फुरित ही होता रहता है जिस सामर्थ्य से अंतकरण के। ऐसा एक सामर्थ्य बुद्धि में वह बुद्धि वृत्ति साक्षात्कार विद्या विद्वान के बुद्धि में प्रदान करती है। उसे यहां पर कहा वीर्यम विन्दते, वीर्यम विद्या विन्दते शब्द से। विद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उससे विद्वान को वीर्य की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। और वो सामर्थ्य है कि फिर कभी भूलता नहीं है स्वरूप को, और अविद्या आकर के फिर उसके स्वरूप को आवृत्त नहीं कर पाती। वृत्ति तो चली गई जो अविद्या को निवृत्त करने वाली, तो जैसे सूर्य उदय हुआ रात्रिकालीन अंधकार को सूर्य ने हटा दिया, और फिर समय आ गया सूर्यास्त हो गया तो अंधकार फिर आता है कि नहीं? ये नहीं कि एक बार सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त होने के बाद फिर अंधकार आएगा ही नहीं। तो अंधकार को, रात्रिकालीन अंधकार को मिटाने वाला सूर्य अस्त होते ही पुनः अंधकार आ जाता है। ऐसे आपके अध्यास को मिटाने वाली अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति क्षणिक है, वो तो अध्यास को मिटा देगी उत्पन्न होकर के, और क्षणिक होने के कारण जब निवृत्त हो जाएगी तो एक प्रकार से सूर्यास्त हो गया। आपके अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला सूर्योदय है तत्त्वमसि वाक्य से आपके अंतकरण में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति प्रकट हो गई, मतलब सूर्य का उदय हुआ, आभ्यंतर सूर्य का, उसने आपके अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त कर दिया, और फिर वो भी निवृत्त हो गई का मतलब सूर्यास्त हो गया। तो बाहर सूर्यास्त होने पर पुनः अंधकार आता है, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जो अंतर का सूर्योदय था, उस सूर्य का फिर अस्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति चली गई, तो क्या फिर अज्ञान रूपी अंधकार आपके प्रज्ञा को आकर के आवृत्त नहीं करेगा? जैसे बाह्य सूर्य का अस्त होते ही फिर जिस स्थान पर अस्त हुआ उस स्थान पर अंधकार छा जाता है। तो आपकी इसी शंका को मिटाने के लिए ये वाक्य है श्रुति में कि वीर्यम विद्या विन्दते, कहते अभ्यंतर सूर्य का एक बार उदय हो गया अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का, तो वो अविद्या रूपी अंधकार को मिटा देता है अंदर से, स्वरूप की आवरक अविद्या को, और पुनः जाने के बाद भी वो जाते समय ऐसा एक वृत्ति अंतकरण में सामर्थ्य देता है वो ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानी के अंतकरण में, कि उस सामर्थ्य के कारण, उस बल के कारण कभी अज्ञान रूपी अंधकार स्वरूप को आवृत्त नहीं करता। फिर उसे एक बार साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार से एक बार अविद्या बाधित हो गई तो बाधित ही रहती है, कभी फिर ज्ञानी के लिए स्वरूप की आवरक नहीं बनती, स्वरूप ज्ञानी के स्वरूप का आवरण नहीं करती है। इसे क्यों नहीं करती? तो कहते हैं इसलिए कि वो वृत्ति जाने से पहले ज्ञानी के अंतकरण को इतना समर्थ करके जाती है कि फिर अविद्या उसे उसके सामने आत्मा को ढक नहीं सकती। तो कहा विद्या का भी तो, अविद्या का भी तो अपना सामर्थ्य था, तो जैसे विद्या के उत्पन्न होते ही अविद्या का जो सामर्थ्य था आत्मा को आवृत्त करने का वो समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति भी विद्वान के अंतकरण में जो सामर्थ्य प्रदान करती है, समर्थ बना देती है अंतकरण को विद्वान के, वो सामर्थ्य कभी न कभी तो समाप्त होगा। तो जब समाप्त होगा, विद्या ने दिया हुआ विद्वान के बुद्धि में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जब समाप्त हो जाएगा तो उस समय फिर अविद्या आकर के विद्वान के स्वरूप को ढक देगी। इस प्रकार की शंका की निवृत्ति के लिए वीर्य का विशेषण है, विद्या से प्राप्त वीर्य का विशेषण है अमृतम। विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते, ऐसा अन्वय करिए। कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कारात्मिका वृत्ति रूपी विद्या है, उससे विद्वान को जो सामर्थ्य मिलता है वह अमृत सामर्थ्य है। अमृत का मतलब, अमृत का अर्थ होता है विनाशी, अमृत का अर्थ है अविनाशी, कभी समाप्त न होने वाला सामर्थ्य, अविनाशी सामर्थ्य विद्या विद्वान के अंतकरण में प्रदान करती है। इसलिए फिर एक बार यदि साक्षात्कार हो गया तो अविद्या का फिर कभी अस्तित्व उस अंतकरण में नहीं आता है, वो नहीं आती और स्वरूप को नहीं ढक पाती। ये यहां पर वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम से बताया गया है। इस प्रकार ये इस मंत्र में प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि से एक मूल स्वरूप को आत्मा के रूप में पकड़ने के लिए, साधना करने के लिए ज्ञान की एक प्रकार बता दिया गया। अब ये जो केनोपनिषद का द्वितीय खंड है, इसमें कुल 5 मंत्र हैं। उसमें से प्रथम 4 मंत्रों के का तो विचार हम लोगों ने यहां कर दिया। पंचम मंत्र है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माल्लोकाद अमृता भवन्ति। यह मंत्र यहां पर इस उद्देश्य से श्रुति रख रही है कि इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है 84 लाख प्रकार में से मनुष्य योनि में आया हुआ जो जीव है। वो जीव अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि ब्रह्म तो शास्त्र प्रमाण का विषय है, बाकी योनि में पशु आदि के तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विषयों का मात्र ज्ञान हो सकता है, और शास्त्र प्रमाण का विषय जो परमात्मा है, इस परमात्मा का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है मनुष्य में। शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है, मनुष्यों के लिए शास्त्र है। गाय भैंस आदि सत्संग में बैठ करके अपने स्वरूप को समझना चाहेगी, उसे तत्व जिज्ञासा हो भी जाए तब भी वो शास्त्र समझ नहीं पाती। लेकिन मनुष्य यदि चाहे तो शास्त्र समझ सकता है। इसलिए मनुष्य का शास्त्र में अधिकार होने के कारण और परमात्मा को जानने में ये बताया जाता है स्पष्ट रूप से परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव 2 स्थान पर होता है। एक तो ब्रह्मलोक में, जैसे प्रकाश और अंधकार इन दोनों का स्पष्ट विवेक आपको यहां पर होता है, उतना स्पष्ट विवेक आत्मा और अनात्मा का ब्रह्मलोक में होता है। भूमि का ही प्रभाव है वहां का, वहां के लोगों का अंतकरण ही इतना शुद्ध होता है, वहां प्रवेश ही मिलता है उन्हीं लोगों को जो ब्रह्मलोक के नीचे वाले लोक हैं उनके प्रति विरक्त है। का मतलब संसार का आकर्षण जिनको आकर्षित नहीं कर पा रहा है, शुद्ध चित्त है, जो विरज है, वही तो ब्रह्मलोक में जा पाता है। और ब्रह्मलोक में प्रकाश और अंधकार का जैसे स्पष्ट विवेक हम लोगों को होता है, ऐसा आत्मानात्मा का स्पष्ट विवेक ब्रह्मलोक के नागरिकों को हो सकता है। एक और दूसरा ये मनुष्य शरीर में, तो ब्रह्मलोक तो हमें उपलब्ध होगा कि नहीं होगा इसके प्रति संशय है। इस शरीर के छूटने के बाद तो मनुष्य से विद्या देवलोक कहा जाता है ना, विद्या यानी सगुण ब्रह्म की उपासना, और सगुण ब्रह्म की उपासना उपासक करें और वो उपासना परिपक्व हो जाए तब जाकर के उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और वो उपासना स्वयं ही समझ सकते हैं कि कितनी होती है हमसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का हेतु हो तो, जो सगुण ब्रह्म चिंतन है वो कितना हम कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में तो हमें मनुष्य शरीर उपलब्ध है। इस शरीर में भी आत्मानात्मा का विवेक हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर में हम अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये कठोपनिषद में कहा गया है। तो ये दो स्थान ऐसे हैं जो परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति करने के लिए उपयोगी है, और ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर के रहते रहते श्रुति कहती है, यदि हम उस सत्य परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करने में समर्थ हो गए, यह चेत अवेदित, यह शब्द का अर्थ है ज्ञान के योग्य मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन रहते रहते सत्यम अवेदित, सत्यम का अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति में अबाधित और अपरिछिन्न ज्ञान परमात्मा का स्वरूप बताया है, वही सत्य जिसे पूर्व में स्रोत्रादि का स्रोत्रादि कहा, विदित अविदित से अतिरिक्त कहा, समस्त अंतकरण वृत्तियों में चेतना का संपादक चेतन कहा, उसी को यहां पर यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति में सत्यम शब्द से कहा जा रहा है। जैसे तैत्री उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस मंत्र में श्रुति सत्य ज्ञान अनंत इन शब्दों से कह रही है। वह परमात्मा इस वाक्यस्थ सत्य शब्द का अर्थ है, और उसे कहते हैं अवेदित। तो किसी मनुष्य ने यदि जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तब तो कहते अस्ति, तो उसे अमृतत्व की निश्चित ही प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रुति ने कहा है कि परमात्मा का आत्मरूप से ज्ञान अमृतत्व का निमित्त है। अमृतत्व ही विन्दते कहते हैं ना, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, तो उसे तो फिर निश्चित ही अमृतत्व की प्राप्ति हो गई, का अर्थ है उसका जीवन सफल हो गया। इसे तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, मनुष्य में सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? तो कहते हैं मनुष्य जीवन का शास्त्र की दृष्टि में और शिष्ट लोगों के दृष्टि में जो परम कर्तव्य है, उस परम कर्तव्य को जो संपन्न करता है उसे कहा जाता है बुद्धिमान मनुष्य। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य वही होगा कि जो जिस कार्य के लिए भेजा गया है उस कार्य को ठीक से संपन्न करता है, उसे बुद्धिमान कहा जाएगा। नहीं तो मुख्य कार्य को तो भूल गया और दूसरा कार्य कर रहा है, तो वो हो जाएगा फिर बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि में जो भेजा है वो किस उद्देश्य से भेजा है, तो ईश्वर को हम आत्मा के रूप में जान सकते हैं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए मात्र ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए मनुष्य शरीर का मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मुख्य कर्तव्य है परमात्म ज्ञान की प्राप्ति। और उस परमात्मा एतद् बुद्ध्वा में एतद् का अर्थ है यही ब्रह्म, और उसको बुद्ध्वा यानी आत्म रूप से जान करके। गीता में भगवान कहते हैं कि एतद् बुद्ध्वा, कि परमात्मा का ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने से क्या होता है, तो उसे सबसे बुद्धिमान माना जाता है, बुद्धिमान साद। और कृतकृत्यश्च भारत, फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म रूप ही होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है, ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा तीनों लोकों में कोई भी अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कर्तव्य नहीं है। नमेष्टि कर्तव्यम पार्थ त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ मेरा तो तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य है नहीं, ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिसे मुझे प्राप्त करना हो। इसलिए कृतकृत्य है परमात्मा, और ज्ञानी के लिए तो भगवान कहते हैं ना कि ज्ञानी तो आत्म व मे मतम, यानी श्रुति भी स्मृति भी और विद्वान की अनुभूति भी और युक्ति भी ये बताती है कि ज्ञानी तो जो सारे कर्तव्यों से रहित परमात्मा है, तदात्मक होता है। ब्रह्मवेद ब्रह्म वो होती है श्रुति कह रही है, और स्मृति है गीता, तो गीता में भी भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं, तो भगवान का स्वरूपभूत जो ज्ञानी है उस ज्ञानी का भी कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। तो और विद्वान की अनुभूति भी ये बताती है कि अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार जिसका अहम जहां है उसे वही माना जाता है, अज्ञानी का अहम रहता है, अज्ञानी की अहंता रहती है शरीरादि में, इसलिए वो शरीरादि रूप है, और ज्ञानी की अहंता ज्ञानी का शरीर होने पर भी शरीर में नहीं रहती अपितु परमात्मा में रहती है। इसलिए ज्ञानी की अनुभूति के अनुसार भी ज्ञानी की अहंता परमात्मा में होने के कारण वो परमात्मा है। तो इस प्रकार ये श्रुति स्मृति युक्ति और विद्वान की अनुभूति से ये निश्चित होता है कि कोई भी कर्तव्य जिस परमात्मा का नहीं है ऐसा परमात्मा रूप है ज्ञानी। इसलिए और जो उसे कहा जाता है कृतकृत्य, कृतार्थ, अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, इस श्लोक में भगवान गीता में ही बताते हैं 15वें अध्याय में कि परमात्मा ज्ञान से कृतकृत्य होता है व्यक्ति, उसका जीवन फिर सफल होता है, उसको किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं होती है, कोई कर्तव्य उसका शेष नहीं है, का मतलब जीवन सफल हो गया। यहां पर यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, इस वाक्य में प्रथम पाद में यही कहा जा रहा है कि मनुष्यों में जिसने मनुष्य शरीर के रहते रहते जीवित अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया, परमात्मा का आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं उसका जीवन सफल है। और यदि मनुष्य जीवन तो मिला और परमात्मा को जाने बिना ही शरीर समाप्त भी हुआ, मनुष्य शरीर छूट गया, मृत्यु आ गई, तो कहते हैं न चेद इहावेदिन, मनुष्य शरीर के रहते रहते यदि परमात्मा को हमने नहीं जाना, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्म रूप से अनुभव करने में हम असफल रहे, तो उसका जीवन व्यर्थ ही गया, असफल हुआ जीवन, सफलता नहीं मिली। तो केवल इतनी ही बात नहीं है, लेकिन श्रुति कहती है महती विनष्टि, महान विनाश भी उसे प्राप्त होता है। महान विनाश क्या है, कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, उसमें कहीं थोड़ा वो हाथ का पैर का कहीं फ्रैक्चर हुआ लेकिन मरा नहीं, तो माना जाता है कि नुकसान तो हुआ लेकिन महान विनाश नहीं हुआ, और बिल्कुल मृत्यु ही हो गई उसी स्थान पर, तो उसका तो महान विनाश हुआ। ऐसे क्या होता है कि यदि मनुष्य शरीर के रहते रहते हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए तो एक बार मात्र मृत्यु होगी, ऐसा नहीं, फिर तो न जाने कब, ऐसा तो कर्म रहा नहीं कि ब्रह्मलोक जा पाए, तो फिर 84 लाख योनि में घूमता रहना पड़ेगा। और घूम रहे हैं तो एक बार दो बार मृत्यु नहीं हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूपी महान विनाश की ही प्राप्ति हो जाती है यदि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप हम नहीं जान पाए तो। तो यह चेद न चेद यहां वेदिन महती विनष्टि। इसलिए क्या करना चाहिए, तो इस मंत्र का अभिप्राय निकला कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो उस परमात्मा के स्वरूप को जानने से मुक्ति मिलती है। उसे ही भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माल् लोकाद् अमृता भवन्ति से बताया जा रहा है कि भूतेषु भूतेषु यानी समस्त प्राणियों में, चराचर सभी प्राणियों में, सब की प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है, सभी के अंतकरण वृत्तियों में चेतना का संपादक जो चेतन है, चेतन चेतना नाम श्रुति कहती है, जो समस्त चेतनों में चेतना का संपादक है, उसे उसके प्रकाश्य अंतकरणादि से अलग करके आत्मा के रूप में अनुभव करके, विचित्र का अर्थ है, आत्मा के रूप में उसका अनुभव कर लिया तो क्या हो जाता है, उसे धीर कहा जाता है। ऐसे धीर लोग आत्मानात्मा का विवेचन करके जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है चेतन, उसका आत्मा के रूप में अनुभव करके इस शरीर से अलग हो जाते हैं। शरीर में रहते रहते शरीर से अलग जो चेतन है उसमें स्थित होते हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो विधेय मुक्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति, जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में रहते हैं जीवन मुक्त होकर के, और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही फिर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। अमृत होने का अर्थ है ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, विधेय कैवल्य को प्राप्त करना, ये ज्ञान का फल है। इस प्रकार और ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य इस मंत्र ने एक प्रकार से साधकों को सावधान किया कर्तव्य के प्रति प्रयत्न अधिक करने के लिए। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।